और बिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। पिछले बुधवार को हमने श्लोक क्रमांक 14 से चर्चा की थी, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि रणभूमि में क्या क्या हो रहा है और संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं इसके पीछे संजय अपनी भक्ति दर्शा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति और वो प्रतीक्षा में थे कि कब अर्जुन एवं श्री कृष्ण के विषय में वो बता सकें। और क्योंकि धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा कि पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इसलिए पांडु के पुत्रों को बताने के लिए, इनके विषय में बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताना आवश्यक था, क्योंकि बिना भक्त के भगवान की कोई परिभाषा नहीं। तो इसलिए वो दृश्य दिखा रहे हैं धृतराष्ट्र को संजय, जिसमें श्वेत घोड़ों के रथ पर आरूढ़ स्वयं माधव और अर्जुन, उन्होंने क्या किया। सबसे पहले उन्होंने अपना शंख बजाया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो आज हम ले रहे हैं, जिसमें संजय तीन व्यक्तियों के शंख ध्वनि के विषय में बता रहे हैं कि वो तीन व्यक्ति कौन हैं। सबसे पहले जिनका शंखनाद हुआ, और इनमें से प्रमुख सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्लोक के कुछ विशेष शब्द, हालांकि पूरा श्लोक ही है, परंतु फिर भी एक एक शब्द पर आज गौर करना चाहेंगे। पांच जन्यम, फिर ऋषिकेशो, देवदत्तम, धनंजयः, पौंड्रम, महाशंखम, भीमकर्मा एवं वृकोदरः। हालांकि पूरा श्लोक आ गया इसके अंदर, क्योंकि ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि एक एक शब्द की व्याख्या हमारे आचार्यों ने बहुत भूरी भूरी तरीके से की है। सबसे पहले यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जो अपना शंख बजाया, इसके विषय में बताया गया है। पांचजन्यम, भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। क्यों, कोई जानता है भगवान के शंख का नाम पांचजन्य क्यों है? कोई कारण होगा कि ऐसे ही थोड़ा अच्छा लगता है पांचजन्य, कि पांच पांडव या पांच जन, या उनकी शंख ध्वनि काफी पंचिंग थी क्या यही तो कारण नहीं था? जब इसका इतिहास है, भगवान श्री कृष्ण जब अपने विष्णु रूप में अपने आयुधों को धारण करते हैं, उनमें से शंख एक है, शंख चक्र गदा एवं पद्म, इनमें से शंख है। तो ये ध्यान रखना होगा कि आध्यात्मिक संसार में कोई भी वस्तु नहीं है, वहां पर सभी व्यक्ति हैं। तो शंख भी वो भगवान के भक्त हैं, वो एक व्यक्ति हैं। तो एक बार पांचजन्य शंख को थोड़ा घमंड हुआ कि मुझे जो सौभाग्य मिला है वो लक्ष्मी देवी और किसी और भक्त को भी नहीं मिला, कि मैं हर समय भगवान के अधरों पर रहता हूं। तो जब थोड़ा सा भी घमंड हो जाता है किसी भक्त में, तो भगवान व्यवस्था करते हैं उस पर मरम्मत करने के लिए। तो लक्ष्मी देवी ने श्राप दे दिया शंख को कि असुर बन जाओ। ये आसुरी प्रवृत्ति है कि अपने आप को किसी और से ऊंचा मानना। अब देखिए, यहां पर भौतिक संसार में ऐसी प्रवृत्ति को लोग कहेंगे, अरे भाई ऐसी प्रवृत्ति तो होनी चाहिए, और जगह जगह पर लोग इस पर सेमिनार देते हैं कि कैसे आप अपने आप को सबसे ऊंचा मानो। एक हम सेमिनार देते हैं पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर कि कैसे प्रवचन देना चाहिए, तो उसमें एक व्यक्ति मुझे एक पुस्तक लाकर दिए, और बाहर की कोई पुस्तक थी जिसमें वो सिखा रहे थे कि कैसे ठीक से आप बोलें लोगों के सामने। तो उसमें एक मुद्दा बता रहे थे कि बोलने से पहले जब आप सबके सामने जाते हो तो मन में आपके कौन से विचार होने चाहिए कि सभी लोग तालियां बजा रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट में आप पहुंचो मंच पर और सभी गुणगान कर रहे हैं, आपका जयकार कर रहे हैं, और इस विचार से मंच पर पहुंचो। अब श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया है कि जब हम भगवान के विषय में बताने जाते हैं तो हम सबसे पहले आचार्यों को नमस्कार करते हैं कि उन्हीं की कृपा से हम कुछ बोल पा रहे हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम। उनके कृपा से ये जिह्वा थोड़ी हिल पा रही है। तो इस भौतिक संसार में, यही मैं वो पढ़ते हुए सोच रहा था कि इस भौतिक संसार में इस बात को इतना बढ़ावा दिया जाता है कि अपने विषय में कभी भी नीचा मत सोचो, ऊंचा, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। और है क्या वो, आप जानते हैं। तो जब थोड़ा सा घमंड दिखा तो श्राप मिल गया, तो असुर, और उस असुर का नाम पंचजन। तो ये पंचजन असुर हो गया, और जब भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण बलराम सुदामा, ये जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में थे गुरुकुल में, तो जब ग्रेजुएट हुए और जो इनका कॉन्वोकेशन सेरेमनी था जिसमें अब मांगना है, गुरु को गुरु दक्षिणा मांगनी है, तो सांदीपनी मुनि ने ये सोचा कि भगवान श्री कृष्ण शिष्य के रूप में आए हैं तो भगवान श्री कृष्ण से वो चीज मांगनी चाहिए जो और कोई शिष्य नहीं अर्पित कर सके। तो सांदीपनी मुनि, इनके पुत्र का निधन हो गया था युवावस्था में, और उस समुद्र में डूबकर इनके पुत्र मर गए थे सांदीपनी मुनि के। तो सांदीपनी मुनि चाहते थे कि केवल भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पुत्र को फिर ला सकते हैं, और कोई नहीं ला सकता। मृत पुत्र को फिर से लाना और कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ये गुरु दक्षिणा मांगी कि मेरे पुत्र को फिर से आप जीवित कर कर लेकर आइए। तब भगवान श्री कृष्ण निकल पड़े सांदीपनी मुनि के पुत्र को ढूंढने के लिए, तो सब पुरानी फाइल्स खोली कि कहां मृत्यु हुई और किस वजह से, तो पता लगा कि समुद्र में रहने वाला ये असुर पंचजन, इसने सांदीपनी मुनि के पुत्रों पुत्र को खा लिया था। तो अब भगवान ने सोचा कि हां इसका भी इतिहास है कि ये तो शंख है मेरा, तो एक तीर दो निशाने। तो उस प्रकार से भगवान गए और भगवान ने सबसे पहले तो ये पंचजन असुर का उद्धार किया और फिर पुनः स्थापित किया पंचजन को पांचजन्य शंख के रूप में। तो पंचजन असुर फिर पांचजन्य शंख के रूप में वो फिर से प्रकट हो गए और फिर भगवान ने उसे लेकर यमराज जी के पास गए, क्योंकि यमराज जी वो सबका लेखा जोखा जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात कौन कहां गया है। तो इसलिए हमें सावधान होना चाहिए कि यमराज जी वो हमारा अलॉटमेंट करते हैं, वो प्लेसमेंट सर्विसेज होते हैं ना, तो यमराज जी वो प्लेसमेंट सर्विसेज में हैं कि मृत्यु के पश्चात किसे कहां प्लेस करना है। तो भगवान यमलोक गए अपने शंख को लेकर। तो पहले तो पांच जन ने डर गए कि मुझे लेकर यमलोक क्यों जा रहे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं सांदीपनी मुनि के पुत्र के विषय में जानकारी लेने जा रहा हूं। तो भगवान यमलोक आ रहे हैं, सोचिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यदि यमलोक जाए तो क्या दशा होगी यमलोक की, कि सबसे पहले तो कितना बड़ा टेंशन यमराज जी को आ जाएगा कि उनके आराध्य देव वो आ रहे हैं। तो यमलोक में ये खबर फैली कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं यमलोक में। साधारणतः भगवान यमलोक नहीं जाते क्योंकि वो जानते हैं कि यमराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है, पूरा ट्रस्ट है यमराज जी के ऊपर, जो यमराज जी यमलोक में अपनी सेवा निभा रहे हैं। तो भगवान को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु यहां पर जब खबर फैली कि भगवान श्री कृष्ण यमलोक आ रहे हैं तो सारा यमलोक साफ किया गया। जब बड़ा आदमी आता है तो साफ सफाई ज्यादा होती, पूरी साफ सफाई हुई। और क्योंकि यमलोक में बहुत गंदगी होती है क्योंकि खून खराबा बहुत होता है वहां पे, तो वहां पर सब कुछ ये हुआ, साफ सफाई हुई। तो भगवान सबसे पहले यमलोक के द्वार पर जब पहुंचे तो भगवान ने अपना शंख बजाया। सोचिए जब भगवान की आरती होती तो पुजारी शंख बजाता है हम सबको संकेत देने के लिए कि भगवान दर्शन दे रहे हैं। सोचिए भगवान जब शंख बजाते हैं अपना ही दर्शन देने के लिए, तो वहां पर तो कोई पुजारी उनके साथ आया नहीं कि वो भगवान के बदले शंख बजाए और यमराज जी और यमदूतों को कहे कि सब रेडी हो जाओ दंडवत देने के लिए, पर्दा खुलने वाला है, भगवान का दर्शन होने वाला है। तो भगवान स्वयं अपने आने की सूचना ये पांच जन्य शंख बजाकर उन्होंने की। तो इसके विषय में बताया गया है कि केवल भगवान के पांच जन्य शंख की ध्वनि के क्या क्या परिणाम हुए यमलोक में, ध्यान से सुनिए। भगवान की यमलोक यात्रा, भगवान की यमलोक यात्रा का अर्थ यह नहीं है कि भगवान किसी कर्म के वजह से वहां जा रहे हैं। साधारण जीव की यमलोक यात्रा तो बहुत बार होती रहती है और बहुत से तो उन्होंने अपना परमानेंट रेसिडेंस बना लिया है अपने कर्मों के वजह से। तो भगवान की यमलोक यात्रा, भगवान ने जब शंख ध्वनि की, पांच जन्य शंख की ध्वनि हुई, तो सबसे पहले ये एक वहां का डिपार्टमेंट है, यमलोक का ये एक डिपार्टमेंट है, असी पत्रवान। असीपत्रवान नरक। हालांकि नाम बहुत सुनने में अच्छा लगता है, परंतु इस नरक में होता क्या है यह भी सुन लीजिए। इस नरक में बड़े बड़े वृक्ष हैं जिनमें कोई पत्ते नहीं, वृक्षों पर शाखाएं पत्ते होती हैं, परंतु ये जो असीपत्रवान नरक है, बड़े बड़े वृक्ष हैं और पत्तों के बजाय इन वृक्षों के ऊपर चाकू, तलवार और जो जो एकदम नोकीली कांटे, जो भी नोकीली सब वस्तुएं हैं और शस्त्र हैं, इन सब से ये वृक्ष बने होते। तो इन वृक्षों को इसलिए वहां पर कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी वाणी से, जो अपने हाव भाव से दूसरों को चुभाते हैं, उनको वहां भेजा जाता है और फिर उन्हें इन वृक्षों के ऊपर जोर जोर से फेंका जाता है। और ये वृक्ष में जितने भी ये तलवार और चाकू हैं, ये सब चुभते हैं इन कुकर्मियों के शरीर में। तो ये जो नरक जिसमें ये सब कुछ हो रहा था, जैसे ही इस नरक में भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि पहुंची, केवल ध्वनि गई, तो ये सारे वृक्ष रिक्त हो गए इन सब तलवारों से, ये सब चाकुओं से। और जैसे कई बार शायद पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं वृक्ष से, उसी प्रकार सभी यमदूत वो खड़े हैं लेकर फेंकने के लिए कुकर्मियों को, देखे कि वृक्ष के ऊपर एक भी तलवार नहीं, और जो सब अरेंजमेंट था वहां का उनको पीड़ा देने के लिए वो सब जाता रहा। तो अचानक ही क्यों हुआ ऐसा, उनको समझ में नहीं आया। हुआ क्यों? क्योंकि भगवान की शंख ध्वनि वहां पर पहुंच गई और सारे जो पापी थे, जो भी फेंके जाने वाले थे, वो सब कूदने लगे। वाह, ये नहीं पता कि किनके वजह से वो बच रहे हैं। तो यहां पर इस नरक में ये देखा गया जब भगवान की शंख ध्वनि हुई। ये थोड़ा महारौरव, ये नरक थोड़ा सुनने में भी लगता है कि हां नरक का नाम कुछ है ऐसा, महारौरव। इस नरक में रूरू नामक पक्षी और अलग अलग जानवर होते हैं, जानवरों का नाम है रूरू, इसलिए इस नरक का नाम है महारौरव। और यहां पर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मांसाहार करता है या दूसरे पशुओं को पीड़ा देता है, तो इस नरक में, महारौरव नरक में, ये रूरू नामक पक्षी सबसे पहले आंखें उसकी ले लेते हैं, उस व्यक्ति, उस पापी की, और फिर उसके शरीर के जितने भी अंग हैं ये सारे जानवर और पक्षी नोच नोच कर खाते हैं। ज्यादा नहीं मैं बोलना चाहूंगा, केवल इतना ही। तो ये महारौरव नरक में जब भगवान की शंख ध्वनि पहुंची, तो वहां के सारे ये रूरू पक्षी और सारे ये रूरू जानवर, ये सभी वहां से भागते हुए निकले, और सभी पापी और यमदूत वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये कहां भाग रहे हैं। तो महारौरव नरक में वहां के जितने भी पापी थे वो सब पापी बच गए। उसके आगे महाभैरव नरक, ये महाभैरव नरक वो है जहां पर पापियों को बहुत भयानक तरीके से डराया जाता है। जैसे आजकल तो लोग, खैर, महाभैरव भी जाने की जरूरत नहीं है, वो हॉरर पिक्चर देखने जाते हैं, वो महाभैरव नरक के समान ही है। वो जाते क्यों है? डरने के लिए, कि वो कई बार तो इस प्रकार से वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ऐसे पिक्चरों का कि डरना मना है। तो इस प्रकार से आजकल तो लोग, खैर, ये महाभैरव नरक का सैंपल यहीं पर देख लेते हैं। तो यहां पर उन पापियों को भेजा जाता है कि जो दूसरों के अंदर डर पैदा करते हैं, जब वो दूसरों के अंदर डर पैदा करते हैं और डर पैदा करने के वजह से जब दूसरों को पीड़ा होती है, तो इन पापियों को महाभैरव नरक में भेजा जाता है, जहां पर इन्हें दिन रात केवल डराया जाता है, केवल दिन रात डराया जाता है, महाभैरव नरक। तो वहां पर जो भी भयावह वस्तु, डराने के लिए डरावनी वस्तु जितने भी सब बनाए हुए थे यमदूतों ने, वो सब एकदम सुंदर दिखने लगे। केवल भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनकर एकदम सभी सुंदर दिखने लगे महाभैरव नरक में। फिर कुंभी पाक ये कुंभी पाक नरक ये है, जहां पर जैसे हम जब जलेबी या ये सब बनाते तो पाक बनाते ना, जलेबी के लिए पाक या रसगुल्ले के लिए पाक, शक्कर का पाक बनता है, तो वैसे वहां पर पाक बनता है। और किसे पकाया जाता है? जो भी ऐसे पापी जिन्होंने पका पका कर जानवरों को खाया है, उन्हें कुंभी पाक में पकाया जाता है। तो वहां के जितने भी पापियों को बड़े बड़े जैसे कढ़ाई होती है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तेल उबाला जाता है और ऐसा टेम्परेचर होता है कि कोई उसके निकट भी खड़े हो जाए तो वाष्प बनकर उड़ जाए, इतना टेम्परेचर होता है। और ऐसे उबलते हुए तेल में उन पापियों को फेंका जाता है। और वहां पर नरक में जो शरीर मिलता है, वो शरीर में कोई मरता नहीं, वो शरीर ऐसा दिया जाता है कि उसमें पीड़ा हजार गुना ज्यादा होती है परंतु शरीर मरता नहीं। देखिए क्या अरेंजमेंट है, नहीं तो उसको देख के हार्ट अटैक आ जाए किसी का, वो कुंभी पाक में जो जो व्यवस्थाएं हैं उसको देख कर। तो वहां पर ये कुंभी पाक नरक में जो पापियों को फेंका जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो वहां पर हुआ क्या कि अचानक वो जो तेल जिसमें सबको पकाया जा रहा था वो एकदम शीतल, सभी स्विमिंग करने लगे अच्छे से कि एकदम वो शीतल जल बन गया। और यमदूत सोचने लगे कि ये लोग आनंद क्या ले रहे हैं इसके अंदर, पीड़ा से इनको तो आक्रंदन करना चाहिए, आनंद क्या ले रहे हैं। तो पता लगा कि भगवान की शंख ध्वनि उस नरक में पहुंच गई। ये बताया गया है कि यदि अलग अलग नरकों के विषय में बताया गया है कि, हालांकि इस शास्त्र से नहीं है परंतु एक व्यक्ति हमें बता रहे थे कि जैसे अलग अलग देशों के लोग अलग अलग तरीके के कुकर्म करते हैं तो उनके लिए अलग अलग नरक है, अमेरिका के लिए अलग नरक है, रशिया के लिए अलग नरक है, भारतीय नरक भी है। तो हुआ क्या कि सभी ये अलग अलग प्रकार के जो नरक थे इनमें भारतीय नरक सबसे पॉपुलर था। तो एक व्यक्ति को वहां भेजा गया, तो जब भेजा गया तो उस व्यक्ति ने देखा कि जो अमेरिकन नरक था वहां पर उसने देखा कि क्या क्या पीड़ाएं पापियों को दी जा रही है। तो वहां पर पीड़ाएं ये थी कि सबसे पहले तो कील के बिस्तर पर लेटाया जा रहा था, कीलों के बिस्तर पर, और उसके बाद फिर एक यमदूत आता और यमदूत आकर उसे बिजली के कुर्सी पर बिठाता, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चेयर पर। और फिर तीसरी पीड़ा उस नरक में यह थी कि वो यमदूत आकर कोड़ों से मारता उसी व्यक्ति को। तो फिर ये व्यक्ति ये देख के डर गया, ये तीन प्रकार की पीड़ा है। फिर दूसरे नरक में गया जहां वो रशियन नरक, तो वहां पर देखा, उसे बताया गया कि रशियन नरक में भी देख लो यदि ये ठीक लगता है तुम्हें। जैसे कई बार बिल्डर घर दिखाते हैं ना, देखो ये ठीक है क्या, इतना स्क्वायर फीट, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर लिविंग रूम, ये सब। तो वैसे उसको दिखाया जा रहा था कि चूज कर लो कौन सा। तो पहले वाले को देखे तो पूरा डर गया। तो फिर बताया गया चलो फिर रशियन नर्क में चलो। तो रशियन नर्क में गए तो वहां पर भी वही हो रहा था। सबसे पहले कीलों के बिस्तर पर उसे पापियों को लेटाया जा रहा था, उसके बाद में इलेक्ट्रिक चेयर पर बिजली का करंट दिया जा रहा था, और फिर यमदूत आकर कोणों से, उसने कहा ये भी यहां पर भी तो वही हो रहा है, फिर कहा ये भी नहीं चाहिए, और नहीं नहीं नहीं। तो फिर भारतीय नर्क में लेकर गए। तो भारतीय नर्क में जब लेकर गए तो वहां पर सबसे ज्यादा लंबी लाइन लगी थी वेटिंग में, आरएसी भी नहीं, वेटिंग में सब लोग थे। तो ये वेट, यहां पर जाने के लिए अंदर जाने, हां सभी जाने के लिए अंदर, तो यहां पर क्या, यहां पर पीड़ा होती है कि क्या क्या होता है यहां? बोले वही तीन चीज होती है। अरे वही तीन चीज होती है तो फिर यहां पर इतना लंबा लाइन क्यों है? तो उन्होंने बताया क्योंकि ये भारतीय नर्क है, वहां पर जो कीलों का बिस्तर, उसके सारे कील चुरा लिए, वो भंगार में बेच दिए, और वो इलेक्ट्रिक चेयर है वहां पर, परंतु बिजली कभी आती नहीं, भारतीय नर्क है तो वहां पर बिजली कभी आती नहीं। तीसरा वो यमदूत आके कोड़े मारता है, उसने अपना हाजिरी लगा के चला गया वो जैसे सरकारी नौकर होता ना, हाजिरी लगा, तो वहां का जो यमदूत है हाजिरी लगा के चला जाता है, तो इसलिए सभी वहां जाना चाहते हैं। तो वो कहा गया है कि भारत नरकों में भी मेरा भारत महान। तो हम फिर से आते हैं पांचजन्य शंख। तो यहां पर जब भगवान की पांच ये शंख ध्वनि, पांचजन्य शंख की ध्वनि बजी, तो उस समय के वो बैच में, उस बैच में जितने भी पापी थे वो सब का उद्धार हो गया, सब भगवत धाम चले गए। और फिर यमराज जी और यमदूत, चित्रगुप्त और ये सब, उनका वेकेशन शुरू हो गया, कोई नहीं, सबका उद्धार हो गया। और फिर हालांकि भौतिक संसार में तुरंत जो पापी हैं वो कोई देर नहीं लगाते यमलोक में जाने के लिए, तो इसलिए तुरंत फिर से यमलोक भर गया, और फिर से कुछ क्षण के लिए उनको क्या कहते हैं, रिलीफ मिला कुछ क्षण के लिए। और क्योंकि उस समय जैसे ही भगवान ने शंख ध्वनि बजाई तो सब चले गए, परंतु तुरंत फिर कुछ क्षण बाद सारे पापी फिर से भर गए, नया बैच आया शुरू, यमदूत चालू अपना। तो भगवान के शंख ध्वनि की महिमा इस प्रकार से बताई गई है कि ये सारे नरकों में इस प्रकार का वातावरण हो गया। भगवान के मुख द्वारा बजाए गए अलग अलग वाद्य कौन कौन से हैं? किसी पशु का सींग, उस वो भी एक वाद्य होता है। तो बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण अक्सर कई प्रकार के श्रृंग बजाया करते थे, और वो श्रृंग बजाने का संकेत अलग हुआ करता था। जब सुबह सुबह कृष्ण बलराम निकलते वन में जाने के लिए, तो कृष्ण बलराम वो सबसे पहले तैयार हो जाते, और कृष्ण बलराम बाहर निकलने से पहले वो अपना श्रृंग बजाते, तो बाकी सारे गोपगण वो जान जाते कि कृष्ण बलराम तैयार हैं, तो वो भी उसी समय फिर अपने घरों से बाहर निकलते, और फिर वो श्रृंग के नाद को सुनकर ये सबको संकेत मिल जाता कि समय हो गया है गौचरण करने का, तो उस प्रकार से निकलते। तो भगवान बचपन में श्रृंग बजाया करते थे अपने मुख से, और शंख जिसकी हमने चर्चा की, शंख भगवान ने वृंदावन में कभी नहीं बजाया, ये सब बाद में शंख भगवान का बजाना शुरू हुआ, और मुरली। ये शंख के विषय में बताया गया है कि जब भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे थे तब भी भगवान ने शंख बजाया था द्वारका में प्रवेश करने से पहले, और बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है भागवत में कि भगवान द्वारका में प्रवेश करने ही वाले हैं और भगवान ने अपना पांचजन्य शंख निकाला और जैसे ही भगवान ने उसे अपने अधरों पर स्पर्श किया तो भगवान के जो अधर हैं वो बिंब नाम का एक फल है जो एकदम लाल होता है, तो भगवान के जो अधर हैं वो बिंब नामक फल के समान लाल लाल है, उनमें वो लालिमा है। हम दामोदर अष्टकम में भी गाते हैं क्या है वो बिंबा मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम, कि भगवान का जो मुख है विशेष रूप से जो भगवान के होंठ हैं वो एकदम वो बिंब के फल, हमने तो वो देखा नहीं होगा कभी बिंब का फल, परंतु लालिमा है उनमें। ऐसा नहीं कि भगवान को कोई लिपस्टिक लगाना पड़ता है उसे लाल करने के लिए, तो एकदम लाल लाल भगवान के अधर जब शंख को स्पर्श किए तो धीरे धीरे शंख जो है वो लाल होने लगा और वो एकदम सफेद शंख भगवान जब तक पूरा किए बजाना तब तक वो पूरा सफेद शंख भगवान के संपर्क में आने के वजह से, भगवान के अधरों के संपर्क में आने के वजह से पूरा शंख लाल हो गया और सारे द्वारकावासी केवल उस शंख को देख रहे थे कि भगवान के अधरों से स्पर्श हुआ वो शंख एकदम भगवान के ही अधरों के समान लाल हो गया। इसकी हम चर्चा करेंगे कि इससे आचार्य गण हमें क्या सिखा रहे हैं कि भगवान के संपर्क में आने से क्या होता है, लाल हो जाता है। भगवान के अब विविध आयुध, क्योंकि अब यहां पर भगवान के शंख की चर्चा हुई है तो एक छोटा सा क्विज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान के शंख का नाम तो आप लोग सब जान गए पांचजन्य, भगवान के धनुष का नाम क्या है? कितना 10 गिने हा? कौन बनेगा हा? बोलो भगवान के धनुष का नाम क्या है? नहीं, धनुष का नाम शारंग, भगवान के धनुष का नाम है शारंग। भगवान गदा भी धारण करते हैं, भगवान के गदा का नाम क्या है? कौमोदकी, ये भगवान के गदा का नाम है। और भगवान के चक्र का नाम सबसे आसान है सुदर्शन। तो ये भगवान के विविध आयुध हैं जो भगवान धारण करते हैं, तो यहां पर केवल शंख के विषय में बताया गया है। भगवान के हाथों की तुलना यहां पर कमल से की गई कि भगवान के हस्त वो कमल के समान थे और कमल के प्रति आकर्षित कौन रहता है सबसे ज्यादा? हंस। हंस कमल के प्रति इतना आकर्षित रहता है कि यदि किसी सरोवर में एक कमल उग रहा हो तो हंस वो कमल के इर्द गिर्द ही अपना जीवन बिताता है। तो यहां पर ये शंख, जैसे हंस श्वेत रंग का होता है वैसे ये शंख भी एकदम श्वेत रंग का, तो भगवान के हस्तों के इर्द गिर्द हर समय ये शंख रहा करता था। तो ये सुंदर वर्णन दिया गया। अब यहां पर भगवान को एक विशेष नाम से उल्लेख किया गया है, ऋषिकेश। भगवान का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है ऋषिकेश, अर्थात भगवान को ऋषिकेश क्यों कहा गया? क्योंकि ऋषिक इंद्रियों को कहा गया है और ईश स्वामी को कहा गया है। तो जो न केवल अपने इंद्रियों के स्वामी हैं बल्कि हम सब के इंद्रियों के स्वामी हैं वो हैं ऋषिकेश। तो भगवान ऋषिकेश की तुलना यहां पर चेतना से की गई है और पांच पांडवों की तुलना पंचेंद्रिय से की गई है। कि किसी के शरीर में पांच इंद्रियां हों, परंतु जब तक चेतना उसके शरीर में नहीं होगी तब तक वो इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती। अब देखिए, हम हमारी इंद्रियों से सब कार्य हम हमारे इंद्रियों से ही करते हैं। आंखों से देखना, जिह्वा से कुछ चखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, पक इंद्री से स्पर्श करना, ये जो पांच इंद्रियां हैं हमारी, जब तक चेतना अंदर है तब तक ये सारी इंद्रियां कार्यरत रहती हैं। और हम भूल जाते हैं, साधारणतः एक भौतिकतावादी व्यक्ति भूल जाता है कि वो यदि इंद्रिय भोग भी करना चाहे तो चेतना अंदर होनी चाहिए उस इंद्रिय भोग को करने के लिए, और वो चेतना निर्भर है परम चेतना के ऊपर, आत्मा निर्भर है परमात्मा के ऊपर। तो इसलिए इंद्रिय भोग करने के लिए भी भगवान का मौजूद होना आवश्यक है। तो यहां पर ये सुंदर तुलना की गई है कि भगवान ने जैसे ही अपना शंख बजाया, भगवान के शंख बजाने के तुरंत पश्चात या साथ साथ धनंजय, अर्जुन ने अपना शंख बजाया, भीम, और इसके पश्चात 18 योद्धाओं ने, पांडव सेना के 18 योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। तो ये यहां पर तुलना इसलिए की गई है, विशेष रूप से पांच पांडवों की तुलना की गई है कि पांच पांडव इंद्रियों के समान थे, कि वो इंद्रियां जिनके अंदर कोई चेतना नहीं है, और जैसे ही भगवान ने अपना शंख बजाया तो सभी पांचों पांडव उत्साहित होकर अपने शंख बजाने लगे। तो ये पांचों, अब संजय ये धृतराष्ट्र को क्यों बता रहे हैं, कि संजय धृतराष्ट्र को ये क्यों कह रहे हैं कि ऋषिकेश ने पांच जन्य शंख बजाया, तत्पश्चात बाकी पांडवों ने बजाया, क्योंकि संजय ये बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ये जो पांचों पांडव हैं, इन्होंने अपने सारी इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगा दिया है, और क्योंकि तुम्हारा दुर्योधन वो अपनी इंद्रियों को खाली अपनी सेवा में वो स्वयं ऋषिकेश बना बैठा है, इसलिए वो हारेगा। तो यहां पर संजय ऋषिकेश शब्द से ये हमें सिखा रहे हैं कि यदि हमें भी दुर्योधन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, और वो दुर्योधन है कहां? नहीं, आपके यहां नहीं है, हमारे हृदयों में वो दुर्योधन, हमारे हृदयों में ही हमने सिंहासन पर बिठाकर उसे खिला पिलाकर तंदुरुस्त बनाकर रखा है दुर्योधन को। तो यदि दुर्योधन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो हमें ऋषिकेश की शरण ग्रहण करनी होगी, और ऋषिकेश की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है, हमारी ऋषिक इंद्रियों को केवल उनकी सेवाओं में हम लगाएं। तो ये पांचों पांडव आए हैं, एकत्रित हुए हैं केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। ये पूरी गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, क्योंकि अर्जुन स्वयं के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, स्वयं के लिए तो वो एक भिक्षुक का जीवन बिताने के लिए तैयार थे, परंतु क्योंकि भगवान चाहते थे तो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए अर्जुन ये युद्ध कर रहे हैं, और क्योंकि अर्जुन ने युद्ध करना स्वीकार किया इसलिए बाकी सारे पांडव तैयार हुए युद्ध करने के लिए। तो यहां पर यह समझना चाहिए कि हमारा भी जीवन इस महाभारत युद्ध के समान है, जिसमें हमें दुर्योधन जैसे व्यक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, परंतु जब तक हम हमारी इंद्रियों को भगवान श्री ऋषिकेश की सेवा में नहीं लगाते तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रश्न पूछा गया है कि अर्जुन ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, क्या हम तैयार हैं? भगवद गीता सुनने के पश्चात हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? अर्जुन की तरह हम भगवान की सेवा में हमारी सारी इंद्रियों को लगाएं। तो यदि कोई हमें ठोक पीट कर पूछे, क्या आप आपकी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए तैयार हो, तो कई बार मन में हम सोचते हैं एक दो चले गए, या ठीक है तीन उनके दो मेरे, चलो चार उनकी सेवा में एक मेरी सेवा में, या फिर एक एक भक्त बोल रहे थे पांचों में लगाऊंगा लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए पांच इंद्रियां उनकी सेवा में और फिर थोड़ा उनको भी अवकाश देना चाहिए, तो फिर कुछ समय के लिए पांच इंद्रियां मेरी सेवा में। नहीं, पांचों इंद्रियां नित्य रूप से नित्य काल, जब तक हम हमारी पांचों इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते तब तक दुर्योधन के ऊपर विजय प्राप्त करना असंभव, और जब तक दुर्योधन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं होती तब तक भगवान श्री कृष्ण के धाम में एंट्री नो एंट्री, नो एंट्री का साइन होगा वहां पर। अब देवदत्तम धनंजय, कि अर्जुन को यहां पर संजय धनंजय इस नाम से पुकार रहे हैं, तो अर्जुन को, अर्जुन ने फिर अपना शंख बजाया देवदत्तम, ये उनके शंख का नाम। अर्जुन को ये शंख मिला जब हमने पिछले बुधवार को इस कथा की चर्चा की थी कि अग्निदेव, अग्निदेव को खांडव वन जब खाना था, तो जब अग्निदेव खांडव वन को खा रहे थे तो मैं दानव वहां से निकले, और मैं दानव अपने आप को बचाने के लिए, हालांकि मैं दानव को भगवान श्री कृष्ण मारने वाले थे, तो भगवान श्री कृष्ण मैं दानव को मारने के लिए जैसे ही उन्होंने अपने शस्त्र निकाले, तो मैं दानव बहुत चतुर दानव था, बुद्धिमान, तो मैं दानव ने किया क्या कि तुरंत जाकर अर्जुन के पैर पकड़ लिए। अर्जुन के पैर पकड़कर मैं दानव ने अर्जुन से कहा कि बचाओ बचाओ, आपके स्वामी से बचाओ। तो अर्जुन, हां, मैं दानव ने यह नहीं कहा था कि भगवान श्री कृष्ण इनके पीछे हैं मारने के लिए, तो जैसे ही अर्जुन की शरण ग्रहण की मैं दानव ने, तो अर्जुन ने कह दिया कि तुम आ गए हो, तुम अब मेरे संरक्षण में हो, चिंता मत करो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही अर्जुन ने यह कह दिया कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, भगवान रुक गए। अब भगवान जो सर्वशक्तिमान है, वो किसे मारना यदि चाहें तो हम क्या कहते हैं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। यदि भगवान श्री कृष्ण ने ठान लिया किसी को मारना, तो केवल भगवान के भक्त ही भगवान को रोक सकते। तो भगवान फिर रुक गए, और फिर भगवान ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि मैंने पहले से प्लान किया था इसे मारने के लिए, तुम दूर करो इसको, थोड़ा साइड में हटो, इसको मारना है मुझे। नहीं, भगवान रुक गए। भगवान ने देखा कि इसने इसने ऐसा खेल खेला है, ऐसा वो चेस में होता है ना, ऐसा पासा फेंका है कि अब मुझे चेकमेट कर दिया। तो भगवान चेकमेट हो गए, अर्जुन ने शरण दे दी मैं दानव को। तो मैं दानव को अर्जुन ने जब बचा लिया, तो मैं दानव ने फिर रिटर्न में वो खांडव प्रस्थ का महल बनाकर अर्जुन को प्रस्तुत किया, पांडवों को प्रस्तुत किया, और उसके साथ साथ ये शंख देवदत्त। परंतु धनंजय, अर्जुन को यहां पर धनंजय क्यों कहा है, जो धन को अर्जित करे वो धनंजय। तो आजकल तो सभी का नाम धनंजय होना चाहिए, तो फिर अर्जुन को धनंजय कहा गया है, और हम लोग जो धन अर्जित कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? हाँ, अर्जुन ने कृष्ण प्रेम का धन अर्जित किया, खैर वो तो नहीं, नहीं, ये भी धन अर्जित किया, सोना चांदी हीरे जवाहरात, वो इसके वजह से धनंजय मिला है इनको नाम, नहीं तो प्रेम धनंजय होना चाहिए था उनका नाम। उन्होंने ये धन अर्जित भी किया, क्योंकि अंतर ये है कि अर्जुन ने जो धन अर्जित किया वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, तो जब वो धन भगवान की सेवा में लगता है तभी वो व्यक्ति धनंजय कहलाया जाएगा, नहीं तो केवल धनी राम, ये सारे जो नाम होते हैं वो सारे नाम होंगे। तो राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज का जब होने जाने वाला था, तो युधिष्ठिर महाराज वो लोग सब वन में रहे, कहां पर उनको कोई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो क्या मिला था, वहां से तो सब निकाल दिया था, प्रॉपर्टी तो कुछ नहीं मिला। और युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना है, तो यज्ञ करने के लिए कैपिटल चाहिए। तो फिर अर्जुन को भेजा गया धन संग्रह करने के लिए। तो अर्जुन निकले धन संग्रह करने के लिए, और अर्जुन जहां कहीं पर भी जाते, जब भी किसी राजा को पता लगता कि अर्जुन आए हैं फंड रेजिंग के लिए, अर्जुन फंड रेजिंग के लिए गए थे, कि अर्जुन फंड रेजिंग के लिए आए, तो प्रचुर मात्रा में सब कुछ अपना सारा कोष खाली कर करके दे रहे थे। और अर्जुन एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर कोई मनुष्य नहीं पहुंच पाता था। तो अर्जुन वहां पर पहुंच गए तो वो एक प्रकार का देवलोक ही था। तो वहां के जो बाहर खड़े हुए जो गार्ड थे, वो संतरी, वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये भौतिक संसार से कोई मनुष्य यहां तक पहुंच कैसे पाया, और यदि कोई पहुंच भी जाता वहां पर तो वो देख नहीं पाता कि यहां पर कोई द्वार भी है और कोई संतरी भी खड़ा है। तो अर्जुन ने देखा ये संतरी खड़े, कहा कि मुझे अंदर जाना है। तो ये समझ गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, कि हमको पहचान लिया है और उसे पता लग गया कि यहां पर कोई राज्य भी है, कि आप ही ने आपकी योग्यता सिद्ध कर दी है, जाइए। तो इस प्रकार से अर्जुन ने बहुत धन एकत्रित किया, और कई धन कैसा था महाभारत में इसका वर्णन है। कि देखिए, ये द्वापर युग की बात है, कि कई राज्य में बड़े बड़े भंडारे हुआ करते थे, ये ब्राह्मण भोज जिसे कहते हैं। तो ब्राह्मण भोज में राजा ब्राह्मणों को सोने की थाली में खिलाया करते थे। ये देखिए, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का चम्मच, सोने का ग्लास, सोने का फोर्क यदि होता तो, सब कुछ सोने का। और ये सारे ब्राह्मण खा पी कर फिर जैसे हम पत्तल फेंक देते हैं ना, खाने के बाद जैसे हम पत्तल फेंक देते हैं वैसे वो फेंक दिया करते थे उसे। तो उस समय का ऐश्वर्य देखिए, वो ऐश्वर्य था। तो आप लोग बोल रहे होंगे फिर तो वहां की घंटा गाड़ी बहुत बड़ी होगी। तो ये वहां का ऐश्वर्य, और अर्जुन ये सब कुछ भी एकत्रित कर लाए, ये सारे ब्राह्मणों। यहां पर ब्राह्मणों का गुणगान किया गया है कि वो इतने विरक्त कि उन्हें कोई आसक्ति नहीं। आजकल यदि ऐसा करें तो यदि स्टील की भी चम्मच कटोरी है तो दो तीन गायब हो जाएगी पेट पॉकेट में अंदर। तो वहां का ऐश्वर्य और ब्राह्मणों का वैराग्य इस प्रकार का था। तो अर्जुन का नाम धनंजय इसलिए है क्योंकि उन्होंने राजसूय यज्ञ और भगवान की, विशेष रूप से भगवान की अग्र पूजा के लिए, वो पूरा यज्ञ भगवान की अग्र पूजा के लिए ही था, और इसलिए ये सारा धन एकत्रित उन्होंने किया। तो धनंजय ये सिखा रहे हैं कि हमें भी यदि धन एकत्रित करना है तो अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, उस धन को लेकर, उन अग्रज की, भगवान श्री कृष्ण की। जैसे कि श्रील प्रभुपाद, इन्होंने भी धन एकत्रित किया परंतु सारा धन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया उन्होंने। और इसलिए श्रील प्रभुपाद वो अक्सर कहा करते थे कि मैं ये सारे इस्कॉन के केंद्र भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े बड़े महल बना रहा हूं। और जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे वो श्रील प्रभुपाद के लिए बहुत ऐश्वर्य उनको देना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि नहीं, ये सारा जो ऐश्वर्य है ये भगवान श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। यहां तक कि जुहू का जो मंदिर, वहां पर श्रील प्रभुपाद के लिए एक बहुत आलीशान कमरा बनाया गया। तो उस समय एक मंदिर में आना शुरू किए थे, बड़े उद्योगपति भी थे, पीएल सेठी, उन्होंने बहुत सहायता भी की जुहू मंदिर को बनाने में। तो उनके बिजनेस में और परिवार में कुछ समस्याएं हुई, तो प्रभुपाद ने कहा कि आकर इस मेरे इस कमरे में रहो, क्वार्टर्स में। उन्होंने कहा ये तो आपके लिए बनाया, नहीं मेरे लिए, मैं एक झोपड़े में रहने के लिए तैयार हूं, परंतु ये सब कुछ बनाया है भगवान के ऐश्वर्य के लिए। तो उन्होंने हालांकि बहुत धन सब जगहों से एकत्रित किया, परंतु वो सब भगवान की सेवा में लगाने हेतु। और अर्जुन ने शस्त्रों द्वारा विपक्षियों को पराजित किया, और श्रील प्रभुपाद ने शास्त्रों द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद की भी तुलना अर्जुन से की गई है कि जैसे अर्जुन अपने शस्त्रों से पराजित कर रहे थे, वैसे ही श्रील प्रभुपाद शास्त्रों को लेकर दुर्योधन इत्यादि इन सब को परास्त कर रहे थे। तो यहां पर हमें इन दो का उदाहरण है, धनंजय अर्जुन और श्रील प्रभुपाद का। अब आगे है तीसरे व्यक्ति जो शंख बजाए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के साथ, भीम। भीमसेन जी ने शंख बजाया, इसलिए देखिए उनके शंख नाद के विषय में कहा गया है पौंड्रम दद्मौ महाशंखम। दद्मौ का अर्थ है बजाना, पौंड्रम ये भीमसेन के शंख का नाम, परंतु बाकी किसी शंख के विषय में ये नहीं कहा गया है कि महाशंख, परंतु भीमसेन के शंख के विषय में कहा गया है महाशंखम, क्योंकि उनके साइज के अनुसार उनका शंख था। यदि भीमसेन को कोई और किसी का शंख दे दिया होता तो वो शंख ही फट जाता, और वो शंख केवल एक छोटा सा कोई टुकड़ा, सफेद टुकड़ा दिखता उनके हाथ में, इसलिए महाशंख, बहुत बड़ा शंख था भीमसेन जी का। और भीमसेन जी के विषय में केवल ये नहीं कहा कि उन्होंने अपना महाशंख बजाया, परंतु भीमसेन जी के विषय में कहा संजय ने, भीम कर्मा वृकोदरा, किसने बजाया, वो जो भयानक कर्म करने वाले भीमसेन, उन्होंने बजाया। तो भीमसेन, यदि इनका ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो इनके जीवन में इन्होंने बहुत बहुत से भयानक कर्म किए, और ऐसे ऐसे राक्षसों का वध इस प्रकार से किया है कि आजकल यदि कोई उसे पढ़े, यदि महाभारत में आप पढ़ोगे भी वो वैसा वर्णन, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि केवल भीमसेन जैसे व्यक्ति ही ऐसे राक्षसों का वध इस प्रकार से किया कर सकते थे। तो तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं, मन द्वारा, वाणी द्वारा और शरीर द्वारा। और भीमसेन जी, इनके सारे कर्म, भीम कर्मा, मन वाणी और शरीर द्वारा भयानक कर्म थे इनके, एकदम भयावह कर्म। तो मन के द्वारा इसमें उदाहरण है शिशुपाल। जब शिशुपाल उस राजसूय यज्ञ में वो गाली गलौज शुरू किया शिशुपाल ने, कि भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो रही है और ये शिशुपाल आकर, सोचिए कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की पूजा हो रही है और यहां पर ये शिशुपाल आकर अपना रेडियो चालू करता है, और बचपन से चालू था इसका रेडियो, पैदा होते ही सबसे पहले इसके मुख से भगवान श्री कृष्ण के प्रति गालियां निकली थी, सोचिए। इसलिए नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि मुझे शिशुपाल की तरह तीव्रता चाहिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, कि जो बचपन से लेके अब तक दिन रात केवल भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही सोच रहा है, हालांकि प्रतिकूल भाव से, परंतु नारद मुनि कहते हैं कि इतनी तीव्रता उसके अंदर कि पैदा होते ही बच्चा रोता है, बिलखता है, यहां पर गालियां, ये शिशुपाल का जीवन। और हम सब ये कथा जानते हैं कि वहां पर जब उसने सेंचुरी मारी, उसे बताया गया था, उसे ये कंडीशन दिया गया था कि जैसे ही तुम 100 के ऊपर गाली बोलोगे, 101 वो गाली निकली तुम्हारे मुख से, तुम्हारा सर तुम्हारे शरीर से निकला, तो ये उसे पता था। और उस समय जैसे ही शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को गाली देना शुरू किया तो भीमसेन इनके मन में इस प्रकार का क्रोध उत्पन्न हुआ कि वो पूरा महल भीमसेन के क्रोध के वजह से तपने लगा। और भीष्म जी जान गए कि यदि मैं भीम को नहीं संभालूंगा तो ये शिशुपाल का तो कचुंबर बना दे। तो इसलिए भीष्म जी उन्होंने भीम को पकड़ा और भीम को पकड़कर भीम ने कहा कि क्यों इसे छोड़ना, ये बोल रहे हो कि इसे मैं छोड़ दूं ये जो शुरू किया कहना। तो भीष्म देव क्यों रोके भीम को, क्योंकि भीष्म देव चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण मारे, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण मारेंगे शिशुपाल को तो शिशुपाल का उद्धार होगा। तो शिशुपाल के उद्धार को सोचते हुए भीम को रोक दिया। तो केवल मन में उनके अंदर यह भयावह क्रोध आने के वजह से पूरा महल तपने लगा। तो ये कुछ हुआ नहीं, वाणी से भी कुछ नहीं, कर्म से भी कुछ नहीं, केवल मन में। तो ये उदाहरण है मन द्वारा उनका भीम कर्म, वाणी द्वारा युद्ध में गर्जना, कि जब कई तो इतने करोड़ों की संख्या में ऐसे योद्धा थे जो भीमसेन की गर्जना सुनकर वहीं धराशायी हो जाते थे। भीमसेन को कुछ करना भी नहीं पड़ता था, केवल सामने जाकर जोर से वो गर्जना करते, वो मलमूत्र त्याग देते वहीं पर सारे योद्धा। और फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि इतनी बड़ी गर्जना सुनने के बाद अब क्या करें, उनके सामने जाकर क्या बोले। कई बार देखा जाता है भौतिक संसार में भी, मुंबई में हम अक्सर देखा करते थे लोकल ट्रेन में जब झगड़ा होता था दो व्यक्तियों के विषय में, जो ज्यादा जोर से चिल्ला सकता है उससे अगला व्यक्ति डरता था, हालांकि वो होगा एकदम अगरबत्ती लेकिन कई बार देखा जाता था कि एकदम कांडी हुआ है लेकिन दूसरे व्यक्ति को ऐसे जोर से चिल्लाएगा, अरे तू क्या सोचता है अपने आप को, इतना जोर से चिल्लाने, फिर वो भी सोचता था कि हाँ मैं क्या सोचता हूं अपने आप। तो केवल गर्जना के वजह से वो व्यक्ति के अंदर डर पैदा हो जाता था। तो सोचिए अब भीमसेन, अब अर्जुन ही 15 फुट के, तो भीमसेन सोचिए महाकाय, कितनी बड़ी काया उनकी, और उसमें फिर जब वो गर्जना शुरू करते थे तो कितने तो केवल ऐसे ही। तो इसलिए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ये जब थोड़ा थक जाते थे तो भीमसेन को बुलाते थे, थोड़ा एक आवाज निकालो, तो आवाज निकाल दे तो सब वहां पर ही धराशायी हो जाते थे बहुत से योद्धा। तो अपनी वाणी द्वारा उन्होंने भीम कर्म दिखाया और शरीर द्वारा, शरीर द्वारा, हालांकि बहुतों को उन्होंने अपने शरीर द्वारा भीम कर्म दिखाया, परंतु ये 3 मेडल जो उनको मिले इनके विषय में बहुत महाभारत में विस्तार से बताया गया। सबसे पहले कीचक, ये कीचक जब अज्ञातवास में थे 5 पांडव विराट नगर में, तो भीमसेन वो बने थे क्या क्या बनेंगे, हेड कुक। भीमसेन उन्होंने किचन डिपार्टमेंट ले लिया, तो किचन डिपार्टमेंट भीमसेन को मिला और उनका नाम क्या था, वल्लभ, और द्रौपदी का क्या नाम था, सैरंद्री, और द्रौपदी वो एक दासी बनी केवल महाराज विराट की, विराट की जो पत्नी थी पटरानी की दासी बनी द्रौपदी। अब हुआ ये कि उस नगर में विराट की जो रानी थी उनसे संबंधित था ये कीचक, और ये कीचक, कीचक की कुदृष्टि थी द्रौपदी के ऊपर, और इसने कई बार द्रौपदी को बहुत वाहियात तरीके से पेश आया था द्रौपदी के साथ। तो द्रौपदी के साथ इस प्रकार से ये पेश आया और कई बार इसने द्रौपदी के ऊपर प्रहार भी करने का प्रयास किया, तो द्रौपदी फिर आकर अपने पतियों से कहती, क्या आप लोग क्या फिर से ये सहन करेंगे, क्या आप लोग सब नपुंसक हैं? इस प्रकार से जब कह दिया, अब वहां पर वो अज्ञातवास में करने के लिए तो वो सबको वहां पर खत्म कर दें कि क्षण में, तो जब ये कहा गया तो भीमसेन आ गया, किसने हाथ लगाया बताओ, नाम बताओ। तो द्रौपदी ने कहा एक कीचक। तो बस भीमसेन को पता लग गया कि कीचक ने इस प्रकार का कार्य किया है। तो भीमसेन ने द्रौपदी से कहा कि आज स्वयं कीचक को तुम बुलाओ और कीचक को कहो कि संध्या के समय नाट्यशाला में एकांत में मुझे आकर मिलना। तो जैसे ही कीचक ने यह सुना कि द्रौपदी ने मैसेज भेजा, एसएमएस भेजा है, तो कीचक इतना प्रफुल्लित हो गया, द्रौपदी ने बुलाया आज, तो एकदम सज धज कर गया और द्रौपदी को थोड़ा इसको और रोचक बनाने के लिए भीमसेन ने कहा द्रौपदी से कि इस प्रकार से कहना ताकि उसके अंदर और आशाएं बढ़ें तुम्हारे प्रति। तो द्रौपदी एकदम शर्माती हुई कीचक से कहती है कि मैं कई दिनों से देख रही हूं कि शायद आप मेरे में रुचि ले रहे हैं। कीचक ने कहा कई दिनों से, अरे पता नहीं कितने जन्मों से। तो द्रौपदी इस प्रकार से कहकर कीचक से कही, तो इसलिए मैंने आज निर्णय लिया है कि मैं आपसे आज एकांत में नाट्यशाला में मिलना चाहता हूं। नाट्यशाला एकांत में? तो कीचक इस प्रकार से तैयार होकर वो टाइम देख रहा था कि कब होगा मिलन। तो जब ये सब कुछ द्रौपदी ने कह दिया तो अब भीमसेन द्रौपदी से कहते, अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ। अब नाट्यशाला में गए भीमसेन और वहां जाकर उन्होंने द्रौपदी के वस्त्र धारण किए और वहां पर एक बड़ा पलंग था, पलंग पर भीमसेन द्रौपदी के वस्त्र धारण कर लेट गए। तो अब कीचक आता है, तो कीचक आकर और जो द्वारपाल को भीमसेन ने बोल दिया था कि कीचक को अंदर भेज देना और बताना मत, तो द्वारपाल को कीचक पूछता है सैरेंद्री अंदर आई है? तो द्वारपाल बोलता है हाँ अवश्य। तो कीचक दूर से देखता है, एकदम सुंदर संध्या का वातावरण और पलंग पर उसके अनुसार सैरेंद्री लेटी हुई है। तो कीचक जाता है और कीचक एकदम मधुर स्वर से, सैरेंद्री आज मैं समय पे आया है? तो भीमसेन वो द्रौपदी की आवाज निकालकर बोलते हैं हाँ। तो हालांकि पूर्ण प्रकार से तो नहीं वो मिमिक्री कर पाए, तो कीचक को लगा कि आज पूछा गला बैठा है क्या, आवाज थोड़ी अलग लग रही। और कीचक को लगा कि कोई शायद रजाई वजाई ओढ़ी, इतना बड़ा शरीर द्रौपदी का कैसे हो गया। तो फिर कीचक ने स्पर्श किया, स्पर्श किया तो क्या कि सैरेंद्री तुम्हारा शरीर इतना वज्र के समान कैसा हो गया, ऐसे इतना कठोर शरीर कैसा हो गया। तो अब भीमसेन बोलते हैं बस आपके विरह में। तो फिर जैसे ही वो चद्दर कीचक ने हटाई तब फिर घमासान युद्ध चालू हुआ। कीचक को पता लगा कि कीचक को ये नहीं पता था कि ये भीम है और भीमसेन उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि ये कीचक कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आएगा और भीमसेन बिना अस्त्र शस्त्र के मारना ज्यादा पसंद करते थे। तो कीचक के विषय में बताया गया है कि भीमसेन ने कीचक को किस प्रकार से मारा। कीचक के दोनों हाथ उसके शरीर के अंदर कर दिए, ये दोनों हाथ लेके कीचक के दोनों हाथ उसके कंधों के अंदर अंदर, कीचक का सर और कीचक का पैर ऐसे, कीचक का कीचड़ बनाया या खिचड़ी बनाया, और कीचक को एक केवल मांस का गोला बना दिया, बस मांस का गोला बनाकर फेंक दिया। वो द्वालपाल ने जब देखा ये मांस का गोला लुढ़कते हुए बाहर आ रहा है, वो वहां पर ही धराशायी हो गया उसे देखकर। और भीमसेन ये करने के बाद उन्हें इतना आनंद हुआ कि बहुत सालों बाद अब खुजली थोड़ी गई हाथ की। और जब कीचक के सगे संबंधी आकर वो देखे तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कौन है, ये क्या है, कौन है नहीं क्या है ये, व्हाट इज इट नॉट हु इज ही, व्हाट इज ही। तो इस प्रकार से कीचक की हालत की, और ये समाचार दुर्योधन को मिला तो दुर्योधन तुरंत उसका लाइट जल गया, बल्ब जल गया दुर्योधन कि कीचक को केवल तीन व्यक्ति मार सकते थे, एक तो स्वयं बलराम जी, एक शायद मेरे ख्याल से शाल्व उनका नाम है, और तीसरे भीम। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, तो दुर्योधन समझ गया है कि भीम ही हो सकता है जिन्होंने कीचक का इस प्रकार से हाल किया। तो अपने शरीर, अपना भीम कर्म शरीर के द्वारा कीचक को मारने पर दिखाया भीमसेन जी। और फिर दुशासन, इसकी हमने चर्चा की थी कि दुशासन ने अपने हाथों से द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, तभी भीमसेन जी ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि यही हाथ को मैं उखाड़ूंगा। तो जब दुशासन का वध करने का समय आया तो भीमसेन जी ने सारे अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और दुशासन को नीचे गिराकर अपने घुटनों को उसकी छाती पर रखकर और एक हाथ उसके गर्दन को पकड़कर उसका हाथ, जैसे किसी गुड़िया का हाथ उखाड़ते हैं, वैसे दुशासन का हाथ अलग कर दिया। इस बात, इस दृश्य को देखकर बाकी कितने सारे सैनिक वहां से रफू चक्कर हो गए। ये हाल हुआ दुशासन का। बकासुर, इसकी भी कथा हम जानते हैं कि उस परिवार में, उस गांव में हर रोज परिवार का कोई एक सदस्य बैलगाड़ी में इस बकासुर के लिए भोजन ले जाया करता था। तो जिस परिवार में ये लोग रुके थे पांच पांडव, तो उस परिवार में उस दिन उनका टर्न था कि उनके परिवार से किसी को जाना था, तो वो लोग चिंता कर रहे थे। और देखिए उस समय के परिवार कि हर एक परिवार का सदस्य उस परिवार में कह रहा था कि नहीं मैं जाऊंगा। कलयुग में जाओ जाओ जाओ, पहले आप हमारे परिवार के हैं। अच्छा, ये भी भूल जाते थे। वहां पर जब कुंती, माता कुंती ने सुना कि इस परिवार में ये चिंता हो रही है, तो ये चर्चाएं हो रही, तो उन्होंने पूछा क्या बात है। तब फिर माता कुंती को बताया गया, तो माता कुंती ने कहा तो चिंता करने क्या जरूरत है, भीम है ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो हमारे अतिथि है, नहीं नहीं हम सेवा करेंगे आपके इस तरीके से कि ये पहले बताया होता तो भीमसेन पहले ये काम कर दिए होते। तो जैसे ही माता कुंती ने भीमसेन को बुलाया और केवल इतना कहा कि एक बकासुर नाम का, कहां बताओ, केवल बताओ कहां, तो सब बताया गया। तो बैलगाड़ी रेडी थी, उसमें सारा भोजन भी रेडी था, तो भीमसेन बैलगाड़ी लेकर गए। और थोड़ा रास्ता लंबा था, बकासुर जहां पर उसका मंगलो था वहां तक रास्ता लंबा था, तो भीमसेन वो धीरे धीरे जो भी अंदर था उसको खाना शुरू किए, और ये सबसे बड़ा अपराध बकासुर के विरुद्ध कि उसके लिए लाया गया ऑफरिंग उसको ऑफर करने से पहले पुजारी खा रहा है। तो बकासुर वो पुजारी के साथ ऑफरिंग खाता था, वो दोनों बैल को और बैलगाड़ी में जो भोजन है और जो बैलगाड़ी चलाने वाला सबको खा जाता था वो, ये बकासुर। तो जैसे ही बकासुर अब, और जानबूझ के भीमसेन थोड़ा लेट, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा रुक कर थोड़ा नाश्ता लिए, फिर लंच लिए, फिर ये सब अपना उनका उनके लिए अल्प आहार चल रहा था, तो लेट हो रहा। बकासुर की अग्नि जल रही थी, लेट हो रहा, ये कौन है आज इतना लेट कर रहा है। तो जैसे ही बकासुर ने दूर से देखा भीमसेन को, तो सबसे पहले देखा कि आज इतना बड़ा मिला है, सब्र का फल बड़ा है। तो फिर और देखा क्या कि भीमसेन बैलगाड़ी चलाते हुए एक हाथ से पीछे से ले लेकर वो खा रहे थे। इतना क्रोध आया इस बकासुर को, तुम्हारी ऐसी हिम्मत, कौन हो तुम, ये वो। फिर भीमसेन ने अपने एक हाथ से बकासुर को रोक लिया, एक हाथ से बकासुर को पकड़ लिया और उसे ऐसे ही पकड़े रखा तब तक पूरा खा रहे थे वो। वो छटपटाता हुआ बिलकता हुआ आधे समय तक तो एक हाथ से ही उसको मार पीट कर आधा अधमरा कर दिया था, जब तक इसे खत्म नहीं, तो इसे खत्म किया और फिर अपना दूसरा हाथ लेकर बकासुर के सारे अंगों को अलग अलग कर पूरा डाइसेक्ट कर वो फिर आए। तो ये भीम कर्म, ये भीम कर्म इसलिए संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र जी आप जान लीजिए कि भीम ने जो अपना शंख बजाया है वो महाशंख है और वो स्वयं भीम कर्मा, उनके कर्म इस प्रकार के हैं, तो जान लो कि क्या भविष्य है तुम्हारे बेटे का। अब वृकोदर, ये भीमसेन का एक और नाम है वृकोदर, इसका अर्थ क्या है? वृक का अर्थ है वैश्वानर अग्नि। हम सब के अंदर जो हम खाते हैं उसे पचाने के लिए जो अग्नि है उसे वैश्वानर अग्नि, भगवान स्वयं गीता में कहे हैं कि वो वैश्वानर अग्नि है हम सब के अंदर, जो हम खाना पचाती है वो अग्नि। तो इनके विषय में कहा गया है कि, और उदर का अर्थ है पेट, तो भीम के विषय में कहा गया है कि इनकी जो वैश्वानर अग्नि हर समय प्रज्वलित रहती थी, ऐसा कोई समय नहीं था जब इनकी अग्नि शांत होती। अब जब ये लोग अज्ञातवास में थे तो भिक्षा में जो कुछ मिलता तो भिक्षा का आधा भाग कुंती, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव इनको मिलता, द्रौपदी, और उसका आधा भीमसेन। तो और आगे चलकर भी ऐसा ही होता कि आधा, और उसमें भी भीमसेन जी अपना पूरा आधा भाग लेने के बाद भी देखते रहते अगर किसी को कुछ नहीं खाना है इनकेस तो यहां ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी अग्नि हर समय, इसलिए उन्हें वृकोदर कहा गया है। कई बार हम लोग भी बोल देते हैं तो जी हमारा भी वृकोदर है, परंतु उसके साथ भीम कर्म होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि भीमसेन इतना खा सकते थे क्योंकि वो ऐसा कर्म भी करते थे। तो यदि कोई इतना खाने वाला है तो उसके बाद भीमसेन सोने नहीं जाते थे पांच घंटा, वो भीम कर्म किया करते थे। हमें याद है हमारे एक भक्त, वो एक बार प्रसाद के लिए बुलाया गया था हमें, तो उन्हें परोस रहे थे, जो बुलाए थे उनको घर वाले वो परोस रहे थे उनको, तो ज्यादा उनके प्लेट में डाल रहे। ये भक्त ने कहा प्रभु जी मैं वृकोदर नहीं हूं, मैं वीक उदर हूं। तो मेरे को आप भीमसेन मत समझे, डालते जा रहे हैं, ये मेरा उदर वृकोदर नहीं है, वीक उदर है, इसलिए कम कम डालिए। तो इसलिए यहां पर इनके खाने के विषय में बताया गया है और श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि क्योंकि उनके कर्म इस प्रकार से थे इसलिए उनकी अग्नि भी इतनी बड़ी थी। और अंत में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की शंख ध्वनि किसका संकेत दे रही थी? धर्म नीति का संकेत। अर्जुन की शंख ध्वनि विजय प्राप्ति का संकेत दे रही थी और भीमसेन इनकी शंख ध्वनि शत्रुओं के भय प्राप्ति का संकेत दे रही थी। तो ये तीन शंख जो इस श्लोक में बताए गए हैं, ये तीन शंख की ध्वनि ये सारे संकेत हैं। और अंत में अब ये बताना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के ही शंख को दिव्य शंख कहा गया है। दिव्यो शंखो, क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में कोई भी आ जाए तो वो दिव्य हो जाएगा। हालांकि शंख अपने आप में कोई दिव्य वस्तु नहीं है, हालांकि शंख तो एक प्रकार की किसी की हड्डी है और वो समुद्र से उत्पन्न होती है, परंतु जब वो भगवान के संपर्क में वो शंख आता है तो उसे दिव्य कहा गया है, या भगवान की सेवा में जब उस शंख को इस्तेमाल किया जाता है तो वो दिव्य बनता है। तो यहां पर हम कुछ उदाहरण लेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में भौतिक से भौतिक वस्तु भी आ जाती है तो दिव्य बन जाती है। तो कुछ भौतिक वस्तुओं का हम उदाहरण लेंगे और इसमें हम समझेंगे कि कैसे भगवान के संपर्क में आने से उन्हें दिव्य कहा गया है। सबसे पहले पत्थर को यदि हम लें तो पत्थर भगवान के संपर्क में आकर कैसे दिव्य हो जाता है? अर्च विग्रह, यहां पर भी मार्बल है और भगवान का अर्च विग्रह भी मार्बल से बना हुआ, परंतु जब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जब उसमें स्वयं भगवान अपना संपर्क देते हैं तो उसे कहते हैं अर्च विग्रह, उसकी आराधना होती है। तो इसलिए पत्थर जो कि एक जड़ वस्तु है परंतु भगवान के संपर्क में आने से वो दिव्यता को प्राप्त करती है। जल, ये भी एक भौतिक पदार्थ है, जो पंच महाभूत है उनमें से जल एक है। तो जल कैसे दिव्य बन जाता है? जब भगवान के संपर्क में आ जाता है, जैसे कि गंगा जल, कोई भी तीर्थ का जल, यहां तक कि जब भगवान की पूजा में जो जल अर्पित होता है वो उसे जल नहीं, उसे अर्घ्य कहते हैं, और उसे जब हमारे ऊपर छिड़काया जाता है तो वो हमें शुद्ध करने के लिए। तो जल भगवान के संपर्क में आकर दिव्य हो सकता है। भूमि भगवान के संपर्क में आकर दिव्य बन जाती है, वही ब्रज भूमि भगवान के संपर्क में आकर दिव्य हुई है। और जो धूलि कण है जो ब्रज रज हम हमारे माथे पर लेते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों के संपर्क में वो भूमि आई है। कोई भी इमारत जब भगवान के संपर्क में आती है तो वो मंदिर, ये भी एक इमारत ही है परंतु भगवान के संपर्क में है इसलिए इसे कोई इमारत नहीं कहेगा, क्या कहेगा? मंदिर। कोई भी पुस्तक जब वो भी भगवान के संदर्भ में भगवान के विषय में तो वो भी ग्रंथ हो जाता है। तो पुस्तक को हम पुस्तक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ग्रंथ कहेंगे। क्यों? भगवान के संपर्क में। कोई भी वृक्ष जब भगवान के संपर्क में आता है तो वो कल्प वृक्ष बन सकता है, इसलिए जैसे कि वृंदावन में भगवान ने कालिया का वध करने के लिए उस वृक्ष के ऊपर भगवान चढ़े तो आज तक उस वृक्ष की पूजा हो रही है, जिस वृक्ष के ऊपर भगवान ने अपने चरण रखे उस वृक्ष की पूजा आज तक हो रही है। तो वृक्ष वो दिव्य हो जाता है भगवान के संपर्क में। और अंततः हमारा शरीर भी दिव्य हो सकता है, हमारा मन, हमारी इंद्रियां और हमारी बुद्धि, यदि हमें दिव्य बनानी है तो हमें भगवान के संपर्क में हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों को, अहंकार को जब हम इनके संपर्क में डाल देंगे तो वो भी दिव्य हो जाएगा। इसलिए दिव्यो शंखो से हम ये सीखते हैं कि जो कुछ भौतिक है वो केवल तब तक भौतिक है जब तक कि वो भगवान के संपर्क में नहीं आ, और हर एक वस्तु आध्यात्मिक हो सकती है जब वो भगवान के संपर्क में आती है। तो इस श्लोक से हम ये सीख रहे हैं कि भगवान ने जो अपना दिव्य शंख बजाया, तत्पश्चात अर्जुन ने, उसके पश्चात भीमसेन जी ने। और मैं और भी श्लोक लेना चाहता था, बाकी सारे योद्धाओं ने जो अपने अपने शंख बजाए, युधिष्ठिर महाराज ने जो बजाया, परंतु उसका यदि हम विस्तार करना शुरू करेंगे तो फिर हाँ हमारा जो वृकोदर है वो वीक उदर हो जाएगा। तो बाकियों के शंख बजेंगे 1.5 महीने बाद, क्योंकि अगले बुधवार को मैं नहीं रहूंगा और मैं जा रहा हूं प्रचार के लिए 1.5 महीने के लिए पाश्चात्य देश। तो तब तक कार्यक्रम चलेगा, परंतु भगवद गीता के सारे श्लोक यहां पर हम पॉज दे रहे हैं कि केवल भगवान और अर्जुन और भीम के शंख बज गए तो तब तक पॉज का बटन दबा रहेगा और बाकी सारे शंख वो बाद में बजेंगे। और तब तक लेकिन कार्यक्रम यहां पर होगा, हम दूसरा लेक्चर सीरीज यहां पर रखेंगे 1.5 महीने के लिए। और इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन अनुरोध है कि आप लोग सब आते रहिए। फिर से हमारी वापसी है जून 20 तारीख, पता नहीं मुझे कौन सा दिन है वो, तो उसके पश्चात हम फिर से जो विराम दे रहे हैं, वेकेशन मत समझना कि अभी 1.5 महीने का वेकेशन मिला है आप लोगों को, कि जैसे स्कूल कॉलेज में वेकेशन मिलता है तो चलो अभी छुट्टी, वेकेशन नहीं बल्कि केवल कई बार क्या होता है कि एक चैनल को देख देख कर बोर हो जाते ना, इसलिए थोड़ा चैनल चेंज होगा, परंतु कार्यक्रम चलता रहेगा, ये दर्शन दूरदर्शन चालू रहेगा। तो इसलिए आप लोग आते रहिए और आप लोग सबका आशीर्वाद मैं लेना चाहूंगा कि आप लोग सब आपका आशीर्वाद दीजिए ताकि श्रील प्रभुपाद के पदचिन्हों पर और उनके जो शिष्य हैं उनके पदचिन्हों पर चलते हुए हम भगवद गीता का यही संदेश सारे नगर आदि ग्राम में बांट सके और फिर इस ग्राम में फिर से आ सके, ताकि आप लोगों का फिर से आशीर्वाद लेने के लिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय।